मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 6 मई 2020 के AFEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे एक नए विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसका संबंध यूं कह लीजिए कि सीधे सीधे करंट अफेयर्स से नहीं है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट, और वह विषय है कैसे बने भारत सशक्त। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताने से पहले आइए पहले कुछ दूसरी बातों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपने जो ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट हैं उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। कल मुझे बहुत मेल मिले हैं और उस मेल में आप सब ने लगभग सभी ने यह बात बताई कि जब मैं करंट अफेयर्स पे चर्चा कर रहा होता हूँ डेली ऑडियो लेक्चर में, और उस दौरान जो मैं आप सबको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप यह लेक्चर जरूर सुन लें, तो जब आप इस निर्देश का पालन करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मैं दबाव देकर के कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और आप सबने लगभग ये रिक्वेस्ट की है कि सर इस पद्धति को बनाए रखा जाए। तो पहली बात तो यह है कि यदि आप सबको फायदा हुआ है तो यह मेरे लिए बहुत आत्मसंतोष की बात है। आप लोगों ने ईमेल के जरिए सूचित किया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने जो अनुरोध किया है डेफिनेटली उसे सर माथे पर लेते हुए मैं उसे बनाए रखूंगा। दोस्तों बात केवल इतनी ही नहीं है, मुझे ये मेल पढ़ करके और ज़्यादा खुशी हुई जब जो ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट नहीं हैं उन तक ने इसका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि सर ठीक है हम आपके ऑनलाइन क्लासेस के पेड स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन जब आप इस तरह की बात बताते हैं तो हमारे पास दूसरे साधन तो हैं, हम उन लेक्चर्स के से संबंधित टॉपिक को चाहे किताबों से जाकर के पढ़ें या और अपने यूट्यूब पर जाकर के सुने, हम ऐसा करते हैं और इससे हमें ये पता लग जाता है कि नहीं नहीं ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसकी अच्छी तैयारी के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए, तो प्लीज़ आप इसे बनाए रखें। दोनों ही तरह के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इसके पक्ष में लोकतांत्रिक भाषा में मैं बात कहूँ तो अपना मत प्रदान किया है दोस्तों, तो इसे मैं बनाए रखूँगा। और एक बार फिर से मैं पेड स्टूडेंट के लिए भी और नॉन पेड स्टूडेंट के लिए भी अपनी ओर से बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने इस खासकर मेरे प्रयास को आप यूं कह लीजिए कि सफल बनाने की ओर कदम बढ़ाया है और कहा है कि मैं इसे आगे भी जारी रखूं। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी दूसरी घटनाओं पर बात करना चाहूंगा जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई एक बात को आइए देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज में भी सुना कि जो JEE का जो मेन्स एग्जामिनेशन है उसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई 18 से 23 जुलाई, और इसके बाद जो नीट एग्जामिनेशन है उसकी डेट रखी गई है 26 जुलाई। दोस्तों मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ये नई डेट डिक्लेयर की गई है और JEE वगैरह तो ये नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है, राइट? इसका मतलब है कि सरकार के दिमाग में, संस्थान के दिमाग में जुलाई में एग्जाम लेने की बात है। देखिए 18 जुलाई यानी मिड जुलाई की बात कही गई है, यानी कि हम मान करके चले कि जुलाई से उन्हें लग रहा है कि स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और एग्जाम लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों 31 मई को तो प्री एग्जाम होना ही था, हमें नहीं मालूम है कि अब UPSC क्या कदम उठाती है, लेकिन जुलाई में अगर इस तरह के नेशनल एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं दूसरी संस्थाएं तो थोड़ा सा हम ये मान करके चल सकते हैं कि हो सकता है कि UPSC भी कुछ जून के 3rd वीक 4th वीक तक डेट इसकी डिक्लेयर कर दे। इसीलिए मेरी जो सिंसियर एडवाइस आप सबको है वो ये कि प्लीज़ अपने प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढील ना दें। आपका ये जो प्रयास है भले ही एग्जामिनेशन की डेट बहुत आगे बढ़ जाए लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों एक खबर आपने न्यूज में सुनी, वो दलहन को लेकर के खबर थी कि 5 लाख हेक्टेयर से जो दलहन का जो एरिया है बढ़ा करके 8 लाख हेक्टेयर इस बार कर दिया गया है, जो बहुत ही एनकरेजिंग है। और आपको मालूम होगा कि 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ आते हैं, तो इस तरह से काफ़ी बड़ा रकबा इस बार दलहन का बढ़ गया है। जहां तक दलहन का मामला है फ्रेंड्स, तो इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और अगर हम कुपोषण से इसे जोड़ करके देखें तो अगर हम अपने लोगों को दलहन दालें जिसे आप कहते हैं ना, मसूर है, चना है, अरहर है, सब दालें हैं, अगर हम दालें प्रोवाइड कर सकें तो जो कुपोषण की स्थिति है उस पर काफ़ी कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि जो दाल का प्रति व्यक्ति जो दाल की उपलब्धता है वो हमारे यहाँ कम रही है। आजादी के समय के अगर हम आंकड़े लें तो उस समय प्रति व्यक्ति के लिए 60 ग्राम दाल मौजूद थी, जो अब घट करके लगभग 40 ग्राम हो गई है। जबकि जो विश्व का जो मानदंड है वो यह है कि 80 ग्राम तो प्रति व्यक्ति होना ही चाहिए, यानी कि प्रति व्यक्ति को रोज दालें खानी ही चाहिए। वैसे अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़े देखें तो उनका कहना है कि 104 ग्राम प्रति व्यक्ति दाल उन्हें डेली मिलनी चाहिए। तो हमारे यहाँ अभी भी दाल का प्रोडक्शन कम है। अभी जो हमारे दाल का प्रोडक्शन है लगभग की बात मैं कर रहा हूँ 150 लाख टन के करीब है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो लगभग 180 लाख टन की है। तो हमारे यहाँ 30 से 40 लाख टन की कमी है जो हमारी मांग है उसको देखते हुए। तो ये थोड़े से आंकड़े मैंने बताए हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में आप इसके बारे में एक थोड़ा सा आभास मात्र रख लें, उतना ही पर्याप्त होगा। दोस्तों आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ, और खासकर मैंने मुख्य विषय के तहत इसको क्यों चुना है पहले मैं आपको ये बात बता दूँ। फ्रेंड्स आपसे आप देखिए कि सिविल सर्विस मेंस के पेपर उठा करके देखिए, मेंस के मान लीजिए कि उसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 या 25 पूछे जाते हैं, इसलिए मान लीजिए मैं कह रहा हूं, तो 20 क्वेश्चन में आप कोई भी पेपर ले लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं, तो उसमें पाएंगे आपके 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट कह लीजिए कि जो ग्रेजुएशन वगैरह में पूछ, पैटर्न की बात मैं कर रहा हूं, उस पैटर्न पर पूछ लिए जाते हैं और उसे हर स्टूडेंट जिसकी थोड़ी सी भी ठीक ठाक तैयारी है उसे सॉल्व कर लेता है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होते हैं, मैं 15 क्वेश्चन तो ऐसे कह सकता हूं, चलिए उधर मैं 5 कर देता हूं आंकड़े को, तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो घुमावदार होते हैं, और इन 15 में 7-8 क्वेश्चन तो काफी घुमावदार होते हैं। जब मैं काफी घुमावदार और घुमावदार की बात कर रहा हूं तो उसके दो पेच हैं। पहला तो यह कि वो स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं होते इसलिए वो घुमावदार होते हैं, आपको उन्हें समझना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि उन प्रश्नों में कहीं ना कहीं आप शामिल होते हैं, उनके उत्तरों में, यानी कि आप अपनी राय बताइए, आप कैसा समझते हैं, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए, है ना, परीक्षण कीजिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि ठीक है आपने किताबों में पढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन अब आप अपने ढंग से इसको बताइए, अपने ढंग से इसे बताइए और इस पर अपनी राय भी दीजिए। देखिए जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपको डिसीजन लेने होंगे, तो वो उस टॉपिक में भी जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस टॉपिक पर वो आपका डिसीजन मांग रहा है। आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या आप इससे सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए, इस तरह की शब्दावलियां होता है, आप ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए सवाल ये उठता है कि 21 साल की उम्र को न्यूनतम आयु माना है यूपीएससी ने, अब 21-22 साल का जो युवा है अगर वो एग्जाम दे रहा है तो क्या सच में उसके दिमाग की ऐसी क्षमता है कि वो इतने वाइटल टॉपिक्स पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, इन पर वो अपनी राय दे सके? सोच करके देखिए क्या उसका दिमाग वाकई में इस लायक है या इतना उपजाऊ है। तो इस भ्रम में दोस्तों हमें नहीं रहना चाहिए कि नहीं हम अपनी राय दे देंगे, हम में इतनी कुबत आ गई है कि दे देंगे, अपनी राय नहीं दे सकते। अगर आप देने की कोशिश करेंगे तो इनफैक्ट सही मायने में तो आप किताबों में जो आपने पढ़ा है उसे ही दोहराएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो फिर आपका हल क्या है? क्योंकि अगर आप किताबों की चीजों को दोहरा देते हैं तो जो एग्जामिनर है वो तो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो समझ जाता है तुरंत। तो हमारे पास हल क्या है उसका? दोस्तों हमारे पास हल है, और यहीं पर आती है कि विषय की समझ आपकी कितनी अच्छी है, विषय पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है, और साथ ही साथ आप अपने करेंट अफेयर से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। उदाहरण के रूप में अभी एक इंटरव्यू छपा एक अखबार में, और ये इंटरव्यू है जो इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर स्टीव एच हैंकिंग का, हैंकी का, स्टीव एच हैंकी, ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं और अर्थशास्त्री भी हैं और दुनिया के बहुत से देशों में ये अर्थशास्त्र के सलाहकार भी रहे हुए हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इनसे प्रश्न किया गया, और खासकर ये जो COVID-19 का जो मामला चल रहा है इसको लेकर के प्रश्न किया गया। ठीक है, तो अब ये तो इस विषय के विशेषज्ञ हैं। तो जब आप ऐसे इंटरव्यू पढ़ते हैं तो, और पढ़ने के बाद डेफिनेटली चूंकि इकोनॉमिस्ट है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर ये अपनी राय देंगे, और ये जो राय है ये आपको किताबों में सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि किताबों में भी वो बातें हों लेकिन इनके कहने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। तो यदि आप वो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं तो सीधी सी बात है कि ये आपके अपने विचार बन जाते हैं, यहां से आपको नए विचार मिलेंगे। जैसे प्रोफेसर हैंकी ने जो 2-3-4 बातें कही हैं कि भारत कैसे सशक्त बन सकता है, पहली बात तो उन्होंने कही कि देखिए जो COVID-19 है ये भारत के ऊपर ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि भारत की आबादी अभी भी 50% कृषि पर निर्भर है और कृषि चल ही रही है तो भूखे नहीं मरेंगे। पहली बात उन्होंने कही तो एक बहुत अच्छी बात कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत में बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, लाखों उद्यमी हैं, वो विकसित देशों में चले गए हैं, अब वो लौटेंगे तो भारत की ताकत बढ़ेगी, और अगर ये लौटने के बाद कृषि क्षेत्र में एंटर कर गए तो भारत बहुत तेजी से विकास कर सकता है, भारत बहुत सशक्त बन सकता है। देखिए उन्होंने एक दूसरी बात कही, अब ये नया आइडिया उन्होंने दिया। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो भारत की जो मुद्रा है वो बहुत कमजोर है और इसकी मांग दुनिया में नहीं है, तो भारत को क्या करना चाहिए। अब आपको ये किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, इन्होंने सुझाया कि भारत सन 1965 के आसपास सिंगापुर, साउथ कोरिया, चीन जैसे देश भारत से भी ज्यादा गरीब थे, लेकिन आज वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो भारत को एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व चाहिए और अपनी मुद्रा के सशक्तिकरण के लिए उसे चाहिए कि वो हांगकांग की तर्ज पर करेंसी बोर्ड बनाए। अब ये पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा, अब हम अपने दिमाग से सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक तथ्य आ गया। अगर इस तरह के सीधे सीधे या इसके आसपास कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसमें ये मेंशन कर सकते हैं कि भारत भी हांगकांग के जैसे ही एक करेंसी बोर्ड बना सकता है और इससे उसकी मुद्रा सशक्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं जो स्पेशलिस्ट के, जो विशेषज्ञों के, मेरी सलाह है कि आप उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, और केवल पढ़े ही नहीं बल्कि वो अगर कोई नई बात कहते हैं तो बकायदे आप उन्हें नोट कर लें, और फिर जब आप आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे या आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी राय बताइए तो आप इन्हीं बातों को लिख दें, आप देखिए कि बहुत खूबसूरत आपका उत्तर तैयार हो जाएगा, और ये खूबसूरत उत्तर ऐसा तैयार होगा जो सामने वाले को प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जामिनर है और वह बकायदे आपकी कॉपी जांच रहा है और उन्होंने भी प्रोफेसर हैंसी का ये लेख पढ़ा हुआ है, इंटरव्यू पढ़ा हुआ है, वो पढ़ते ही है, तो वो थोड़ा सा मुस्कुराएंगे कि अच्छा अच्छा तुमने भी पढ़ा हुआ है और इसे तुम अपने विचार के रूप में व्यक्त कर रहे हो, लेकिन वो इंप्रेस्ड होगा, वो जानता है कि आप अपने विचार, इतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं है कि आप नए विचार दे देंगे, इंप्रेस्ड इस बात से होगा कि ये जो स्टूडेंट है कितना अलर्ट है, इसने उनका इंटरव्यू पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं है बल्कि उसे अपने दिमाग में रखा है और उसका यहां इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की जो चुनौतियां हैं जिनके बारे में अभी मैं कुछ दिनों से बात कर रहा हूं, जिसमें एक चुनौती थी जिसमें मैंने कहा था कि आप वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण डेवलप करें, और ये दूसरी चुनौती है कि आप कहां से अपने मौलिक विचार लेकर के आएंगे, वो कौन सा खजाना है जो आपका इंतजार कर रहा है और वहां जाकर के आप अपने लिए चीजें ला सकते हैं, उस रूप में मैंने आज इसकी चर्चा की है, और मुझे लगता है कि ये बात आपको यदि सही लगे और लगनी चाहिए तो आप आगे चलकर इसे उपयोग में लाएं। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, आज आभार व्यक्त जिनके प्रति मैं करने जा रहा हूं उनकी लिस्ट लंबी है। गौरव अवस्थी लखनऊ से, लीना गुप्ता, शिवांश, अमन सोनी, पूजा कश्यप, चैतन्य कृष्ण दीक्षित कानपुर उत्तर प्रदेश से, दीबांजन दास, शिवानी शर्मा, जय कदम, मुकेश यादव, गौरव शर्मा, सुभाष सोनी नीमच मध्य प्रदेश से, अतुल चौहान नई दिल्ली से, अमित कुमार सिंह कोच्ची केरल से, श्रीविश साहिल भाटिया, संतोष कुमार और श्री कृष्ण मौर्य पिपरौली बाजार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। और मित्रों अंत में एक सूचना कि कल गस्टेड हॉलीडे है, कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, परसों आप सबसे फिर मुलाकात होगी और आगे की बातें होंगी, तब तक आप सब सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रशासन जो भी निर्देश दे रहा है उन निर्देशों का पालन करें ताकि आप बाहरी जो वातावरण में जो एक तूफान सा आया हुआ है उस तूफान में भी अडिग खड़े रह सके। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, नमस्कार।